ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں آج ہم جس ٹاپک کو دیکھیں گے وہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی وہاں کی دینی صورتحال کیا تھی. ہم سب اس کو سنتے وقت آج کے حالات کو بھی سامنے رکھیں گے کہ جب بھی کسی معاشرے میں اصل دین بدل کے لوگوں کی مرضی اور خواہش کا دین بن جاتا ہے تو اس وقت واقعی کسی ایسے ہی راہبر کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ جو لوگوں کی اصلاح کر سکے. تو جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا تھا کہ مکہ والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر محسوس کرتے تھے. اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے, مواحد بھی تھے, لیکن ہوا کیا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان تعلیمات کو تو بھلا دیا اور ان کے اندر شرک آنے لگا. پہلا شخص بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا, عمر بن لوہی. مکہ والے اس کو بہت پسند کرتے تھے, اس کی بڑی عزت بھی تھی, اس کے صدقہ خیرات کرنے نیکیوں کی وجہ سے لوگ اس کو ولی اللہ کا ایک ٹائٹل دیتے تھے. جیسے آج کے دور میں کسی کو ہم بہت نیک سمجھیں تو لوگ اس کو بہت نیک سمجھتے تھے. یہ ہے وہ پہلا شخص کہ جس نے ملک شام کا سفر کیا تو دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. اس نے سوچا کہ یہ بھی اچھی بات ہی ہوگی. اور اس نے یہ کیوں سوچا کہ ملک شام تو انبیاء کی سرزمین ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے انبیاء کرام وہیں سے آئے تھے. چنانچہ اس طرح کی ہلکی سی غلط فہمیاں جب لوگوں میں آتی ہیں تو بعض دفعہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے, کوئی کام یہ سوچ کے کر لیا جاتا ہے کہ یہ مکہ میں ہو رہا تھا. تو لہٰذا اس نے سوچا کہ ملک شام میں اگر بت پرستی ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک ہوگی. یہ وہاں سے سب سے پہلا بت جو مکہ میں لے کے آیا اس کا نام حبل تھا. حبل اپنے ساتھ لایا, اس کو خانہ کعبہ میں اس نے گھڑ دیا. مکہ والے اور جو لوگ عموماً بڑے لوگوں ہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں انہوں نے ویلکم کہا, اور اس طرح سے عرب کے اندر بت پرستی کا رواج ہوا. اس سے ہمارے لیے عمل کی یہی بات ہے کہ کبھی بھی کسی کو کوئی کام کرتا دیکھیں تو فوراً بے سوچے سمجھے اس کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حبل کے بعد جو دوسرا بت مکہ میں آیا وہ منات تھا. منات مختلف قبیلے مختلف بتوں کو نصب کرتے تھے. اس کے بعد تیسرا بت لات تھا جو طائف کے علاقے میں نصب کیا گیا. پھر اس کے بعد عزہ, یہ ایک دیوی کا بت تھا یعنی عورت تھی یہ. اور یہ سارے نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑا گیا, اللہ کے لفظ کو بگاڑ کر اس سے لات بنا. اللہ کے نام المنان کو بدل کے منات کی گئی. اور اسی طرح سے یہ سارے نام کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوئے. اب ہوا کیا کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہوتے ہوتے گئیں. بعض کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس جن تھے اور ان جنوں نے اس کو خبر دی کہ فلاں حصے میں کچھ بت جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں, تم جا کے ان کو نکالو. چنانچہ تہامہ ایک وادی کا نام ہے, وہاں یہ گیا اور وہاں سے اس نے بتوں کو نکالا. اور اس طرح اس سال کے حج کے بعد مکہ کے گھر گھر میں بت پہنچ گئے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گھر جو توحید کے نام پہ بنا اور وہ گھر جس کو باپ اور بیٹے نے اللہ کے کام کے اور اللہ کے پیغام کے لیے بنایا وہ 360 بتوں کی اماجگاہ بن گیا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا جب کہ مکہ فتح ہوا. آپ قرآن پاک کی آیت پڑھتے جا رہے تھے, کل جال حق و دحق زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا, اور باطل تو چلے ہی جانے والی چیز ہے. تو لہٰذا بتوں کے ساتھ اپنا دین بھی چلا رہے تھے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, حضرت ابراہیم کی نسل سے کہتے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک کرتے تھے. کہ ایک وقت آیا کہ شرک اتنا بڑا کہ ان کے اصل دین کے اوپر چھا گیا. کچھ اور خرافات تھی جو انہوں نے دین کے نام پہ شامل کی تھیں. یعنی اس چیز کو ہم کھل کے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہر دور میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پھر फिर वो ये सोचने लगते हैं कि हम कुछ भी कर लें तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा इससे, हालांकि नुकसान होता है। चंद चीज़ें आपके सामने रखूंगी कि दीन के नाम पे किन किस किस किस्म की बिदात के ये लोग शिकार हो चुके थे। पहली चीज़ तो ये थी कि मुशरिकीन अपने बुतों के पास मजावर बन के बैठते, इनकी पनाह ढूंढते, इनको ज़ोर ज़ोर से पुकारते, अपनी मुश्किलात और हाजात इनके सामने रखते, और इनका अकीदा बन गया कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करके हमारे काम करवा देंगे। इसी तरह एक दूसरी बिदअत इनके अंदर जो दीन के नाम पे आई वो क्या थी कि बास बुतों का हज और तवाफ भी करते थे और इनके सामने इज्जो अंकसारी के साथ खड़े होते और उनको सजदे तक करते थे। फिर इसी तरह बुतों के नाम पे नजराने देने और कुर्बानियां देने का रिवाज पड़ गया। बास दफ़ा अपने किसी काम के पूरा होने की खुशी में या मन्नत के तौर पे किसी जानवर को किसी बुत की बुत का जो इस्तहान होता है ना नसब, या उसको उस दौर में नसब कहते थे, वहाँ ले जाते और वहाँ उसका खून ज़िबह करते। इस किस्म की चीज़ें कुरान पाक में बहुत जगह सूरत अनाम में, ख़ास तौर पे सूरत मायदा में अल्लाह ताला ने इनके इस शिर्क का पोल खोला। फिर इसी तरह एक और तरीका था इनके अंदर शिर्क के अंदर, और वो क्या था कि जब इनकी साल के बाद फसल आती या इनका कोई भी काम ऐसा होता, कोई जानवर बच्चे देता या कोई दूध देता, तो उसमें से तीन हिस्से करते थे। एक हिस्सा अपनी ज़रूरियात के लिए रखते, दूसरा हिस्सा अल्लाह के नाम पे गरीबों में बांट देते, लेकिन तीसरा हिस्सा अपने बुतों के नाम पे रखते। और बुत तो क्या खाते, वहाँ जो लोग मजावर बन के या उनके कब्रों के और दरगाहों के ऊपर जो लोग खिदमत करने वाले होते थे वो इन चीज़ों को ले जाते थे। इसका जिक्र भी आयत 136 सूरत अल-अनाम में अल्लाह ताला ने किया कि ये अपनी खेतियों में से कुछ हिस्से अल्लाह के नाम पे करते हैं और कुछ बुतों के नाम पे करते हैं। फिर इसी तरह एक और काम भी क्या करते थे कि मुख्तलिफ किस्म की नज़रें मान लेते थे कि ये काम हम करेंगे, ये काम हो गया तो हम ये करेंगे, वो काम हो गया तो हम ये करेंगे। इसी तरह एक बहुत बुरी रस्म इनके अंदर आ चुकी थी कि जानवरों को अपनी मर्ज़ी से हलाल या हराम करते थे। मसलन कुरान पाक में सूरत मायदा में एक आयत आती है कि जिससे पता चलता है कि इन्होंने जानवरों के कुछ नाम रखे हुए थे, बहीरा, साहिबा, सांड, वसीला, हामी। मसलन साहिबा उस ऊँटनी को कहते थे जिससे 10 बच्चे पैदा हो जाएं, कहते थे अब ये बहुत अच्छी हो गई और सारे फीमेल पैदा हों। आपको पता है कि इंसानों में जिस तरह मुज़क्कर की ज़्यादा अहमियत है ना, बेटे के पैदा होने की खुशी होती है, तो जानवरों में फीमेल के पैदा होने की खुशी होती है क्योंकि उनकी नस्ल चलती है ना। तो जो ऊँटनी 10 बच्चियाँ दे देती थी, 10 बेटियाँ जिसकी हो जाती थी, कहते थे ये बहुत पहुँची हुई है, ये बड़ी बुज़ुर्ग है। चूँकि अब ये बुज़ुर्ग बन गई है ना, अब इसके ऊपर हम सवार होंगे ना, हम इसको काटेंगे, और उसको खुला छोड़ देते थे बुतों के नाम पर। अब आप देखिए कि जानवरों को अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है, उसको खाओ, उसका गोश्त खाओ, उसका दूध निकालो। बाज़ दफ़ा दूध नहीं निकालते थे। अब आप देखिए जिस जानवर के थनों में दूध हो और ना निकालें तो तकलीफ़ होगी ना, यानी फितरत को बदलते थे। इसी तरह वसीला उस बकरी को कहते थे कि जिसके 5 मादा बच्चे पैदा हो जाएं। फिर इसी तरह हाम उस ऊँट को कहते थे जिसके नुतफ़े से 10 ऊँट पैदा हो जाएं, मादा हो और उसमें कोई नर ना हो। यानी सब चीज़ों में उनकी अपनी खुराफात थी। अल्लाह ताला ने इन सब को कुरान पाक के ज़रिए से मिटाया। फिर इसी तरह आप देखिए कि कुछ चीज़ें इनके अंदर अकायद में किस तरह के थीं। मसलन तीर निकालते थे, किस्मत मालूम करते थे, अज़लाम, कुरान पाक में इसका ज़िक्र भी आता है, तीरों के ज़रिए से किस्मत मालूम ना करो। तीन किस्म के तीर होते थे इनके पास जिनके ज़रिए से अपनी किस्मत का हाल मालूम करते थे। और अज़लाम कहते हैं उस तीर को जिसके ऊपर पर लगे हों। एक वो तीर होता था जिस पर हाँ या ना लिखा होता था। अब ज़रा देखिए कि इंसान जब हिदायत से भटकता है तो उसका क्या हाल होता है, हाँ या ना होता था। ये तीर अमूमन इस्तेमाल करते थे किसी काम का फ़ैसला करने के लिए, मतलब सफ़र पे जाना है तो वो तीर फेंकते, अगर हाँ वाली साइड निकलती तो कहते चले जाओ, हाँ ये ठीक है, ये अच्छी बात हो गई, और नहीं वाला निकलता तो कहते कि ये दुरुस्त नहीं है। आज अल्लाह ताला ने इसका बदल इस्तखारे में दे दिया। आज मुसलमान को हुक्म है कि जब उसको कोई काम करना होता है तो वो इस्तखारा कर ले, अल्लाह का हुक्म होगा तो वो काम उसके लिए सही हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और जिस काम के लिए एक दफ़ा ना का तीर निकल आता ना तो 1 साल तक उस काम को नहीं करते थे, क्या बस अगले साल हम दोबारा अब ये काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। फिर इसी तरह एक दूसरी किस्म थी तीरों की, जिसकी बुनियाद पर दियत के फैसले लेते, पानी के मामले लेते, यानी अपनी मर्जी के उनके कुछ कानून थे। तीसरी किस्म के तीर ऐसे थे कि जिन पर लिखा होता था ये तुम में से है, और दूसरी तरफ लिखा होता ये तुमसे नहीं है। आपको पता है कि ये तीर किस मकसद से था? जब किसी बच्चे के या किसी इंसान के नसब पर उनको शुबा होता, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे, अभी इंशाल्लाह आगे जिक्र करूंगी कि कितनी कसरत से इनके अंदर जिना और बदकारी थी कि लोगों का नसब तक मशकूक हो चुका था। तो किसी के नसब में अगर शक हो जाता ना कि ये पता नहीं हमारे खानदान से है कि नहीं, तो उसको 100 ऊंटों के साथ हुबल नाम का जो इनका बुत था उसके सामने ले जाते, और जो वहाँ देखभाल करने वाला शख्स होता उसको कहते कि सारे तीरों को मिला के और फेंको, और अगर उस तीर में से ये निकल आता कि ये तुम में से है तो कहते हाँ हाँ ये बच्चा हमारा ही है, या ये हमारे खानदान का शख्स है, और अगर ये निकल आता ये तुम्हारे गैर से है तो फिर कहते कि नहीं जी ये हमारा नहीं। आप देखिए कैसी खुराफात है, क्या इससे इंसानों के नसब नाते देखे जा सकते हैं? फिर इसी तरह जुआ आम था, गैमलिंग, और जुए के तीर इस्तेमाल करते थे, और इसके लिए जुए का ऊंट, यानी जुए का जो ऊंट होता था उसको ज़िबह करते और उसका गोश्त बांटते, यानी बाज़ लोग जुआ खेलते, फिर उससे जो माल हासिल होता उससे सदका करते, ये भी रस्म उनके अंदर मौजूद थी। आज तो ऐसा नहीं है, अपनी पसंद के तरीक़ों से माल कमा के अल्लाह की नाफरमानियों के ज़रिए से, और उसी के से फिर सदका करना और उसी से चैरिटी के काम करना, आज भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। फिर इसी तरह ये लोग नजूमियों पे बहुत यकीन रखते थे, हाथ दिखाना, सितारों का असर, किस्मत मालूम करना, अर्राफ लोग होते थे जो लोगों को देख के पहचान जाते थे, सितारों की हरकत को देख के कहते थे आजकल तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, आजकल उधर हैं, आजकल ये हैं, इस तरह की खुराफात आम थी। फिर इसी तरह बाज़ लोग किसी चोरी के माल को निकालने के लिए अर्राफ के पास जाते और वो लोटा घुमा के या कुछ निशानियां देख के बताता कि फलाह ने तुम्हारी चीज़ चोरी की है या फलाह ने नहीं की। तो बहरहाल आज भी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए कि आज फिर, आज का दौर फिर मुंतज़िर है एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत में, एक ऐसे राहिब, एक ऐसे रहनुमा का कि जो वही पैगाम आम करे जो अल्लाह के नबी ने किया था। सारी बातें पढ़ते वक्त सुनते वक्त हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि क्या वाकई आज कोई इंसान कह सकता है कि आज का दौर बहुत पढ़ा लिखा है और बड़ा मुहज्जब है? वही खुराफात मुख्तलिफ तरह से आज भी मौजूद है। मसलन बाज़ दफ़ा ये एक तीरा, तीरा नाम की एक चीज़ थी, और वो क्या थी? शगुन लेना। बदशगुनियाँ बहुत लेते थे, मसलन कोई जानवर को मारता तो अगर वो जानवर उसके हाथ से बच के दाईं तरफ चला जाता तो कहता ये बाबरकत बात है, और अगर वो बाईं तरफ जाता तो फिर वो उसको कहते कि भाई ये काम अच्छा नहीं होगा। इसी तरह बाज़ लोग खरगोश के टखने की हड्डी को लटका देते थे और कहते थे कि इससे बरकत होगी। बाज़ महीनों और दिनों को मनहूस करार देते, औरतों को मनहूस करार दिया जाता। बाज़ लोगों का ये भी अकीदा था कि बीमारियां छूत होती हैं। इसी तरह रूहों के उल्लू बन जाने का एक तसव्वुर था, कहते थे जो रूहें मर जाते हैं लोग तो उनकी रूहें बाद में उल्लू बन जाती हैं। फिर इसी तरह उनका एक अकीदा क्या था कि मकतूल के कत्ल का जब तक बदला नहीं लिया जाता, यानी अगर मिसाल है कि कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसकी रूह जो है वो भटकती रहती है, उसको सुकून नहीं मिलता और वो उल्लू बन के बियाबानों में घूमती रहती है, जब बदला ले लें तो फिर बहुत सुकून मिलता है। ये सही बुखारी की एक रिवायत के अंदर हमें ये बात पता चलती है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिससे हम देख सकते हैं कि उस दौर में किस तरह दीन को पल्यूट किया गया। अगर इन बातों को सुनते और पढ़ते वक्त हम अपना भी जायज़ा ले लें, आज उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है? क्या आज हम अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उम्मती कहते हैं? यकीनन ताल्लुक़ जोड़ते हैं। क्या हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्या हम अपने आप को हक़ पे समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। तो क्या ये बातें जिनका तذکرہ हम इन लोगों के तनाजर में देख रहे हैं, क्या आज उम्मत मुस्लिमा में दिखती हैं? कहीं ना कहीं बदल के कुछ ना कुछ सही रंग से दिखती हैं। फिर इसी तरह कुछ ऐसी बिदात थी जो ख़ास तौर पे कुरैश से मुतल्लिक थी। कुरैश ऐसे ही थे कि जैसे उस दौर के, यानी सबसे ज़्यादा इन लीड किस्म के लोग, आला ख़ानदान से, आला नस्ल से। इसी तरह बाज़ दफ़ा हज के लिए जब जाते थे तो अपने कपड़े नहीं पहनते थे, किसी और से कपड़े लेते। बाज़ लोग जो थे वो अहराम की हालत में घी या पनीर नहीं बनाना पसंद करते थे। बाद लोग बालों का जो खैमा होता है ना, जो जानवर की खाल के उसे बनता है, उसके अंदर नहीं जाते थे कि नहीं ये जायज़ नहीं है। फिर इस तरह की बातें, जैसे हमारे यहाँ आजकल कहते हैं कि हराम की हालत में मुंह पे कपड़ा ना लगे या सर के ऊपर कोई साया ना हो, तो इस किस्म की खुराफात उस दौर में मौजूद थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत आला समझते थे। एक और बहुत ही बुरी किस्म की बिदअत उनके अंदर आ चुकी थी कि हरम से बाहर जो लोग आते थे ना, तो वो कहते थे कि ये अपने कपड़ों में तवाफ़ नहीं करेंगे, बल्कि खुमस, खुमस एक ऐसे ही था कि जैसे कुरैश जिसको कपड़ा देते थे बस वही कपड़ा पहन सकता था। अब अगर किसी को कुरैश कपड़ा ना दें या कपड़ा कम पड़ जाए तो वो बरहना तवाफ़ करते थे, यानी नेकेडली तवाफ़ करते थे। और माँ औरतें जो होती थीं वो अपने सब कपड़े उतार के और एक छोटा सा टुकड़ा अपनी शर्मगाह पे लगाती थी, और बाज़ दफ़ा तवाफ़ करते हुए ऐसे अशार भी पढ़े जाते थे कि आज तो शर्मगाह खुलेगी और जो खुल गया तो मैं उसको देखना हलाल करार नहीं देती, यानी बिल्कुल मादरजात नंगे होके खाना काबा का तवाफ़ करते थे। इसी का जिक्र सूरत अलाराफ की आयत 31 में अल्लाह ताला ने कर दिया कि या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, के बनी आदम अपने कपड़े पहन लिया करो जब तुम मस्जिद में हो या नमाज के लिए हो। तो बस फिर एक और रस्म क्या थी कि जिन कपड़ों में हज या उमरा करते, एहराम करते, फिर उसके बाद उन कपड़ों को फेंक देते, यानी ना खुद उससे फ़ायदा उठाते ना दूसरे उठाते। फिर एक और इनके अंदर बिदत क्या थी कि जब हज के एहराम के बाद घर से निकलते तो वापस दोबारा उस दरवाजे से नहीं आते, घरों के पीछे इन्होंने बड़े बड़े सुराख बनाए हुए थे कि जिसकी वजह से आते जाते, और इसी को वो नेकी समझते थे। आज भी ऐसी कोई चीज़ें हैं, लोगों ने दीन के अंदर कई किस्म की खुराफात कर रखी हैं, तो इनका बिल्कुल यही हाल था। तो इस दौर में अल्लाह ताला ने अपने नबी को चुना। फिर इसी तरह वहाँ यहूद और नसारा भी थे। यहूद जो थे बुनियादी तौर पर मक्का या मदीना के रहने वाले नहीं थे, मुल्क शाम से आए थे। तो लिहाजा ये वो हालत थी कि जिसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। सूद आम था, रिश्वत आम थी। फिर अगर उस दौर का सोशल लाइफ स्टाइल भी थोड़ा सा अगर हम देख लें तो उससे भी इंशाल्लाह हमें आज के हालात में अपने आप को उससे मैच करने और देखने की ज़रूरत पड़ती है। बस आप देखिए कि इज्तमाही तौर पर जो हालात थे वो क्या थे कि औरत को बहुत डोमिनेंसी हासिल थी, औरत के हाथ में इतनी ताकत थी कि बाज़ दफ़ा लड़ाइयाँ करवा देती। दो कबीलों में जंग करवानी होती या सुलह करवानी होती, इसके लिए औरत को इस्तेमाल करते थे, और मर्द औरतों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। फिर इसी तरह उस दौर में निकाह के जो तरीके थे उसमें चार बड़े मारूफ तरीके थे। एक वही तरीका था जो आज भी मौजूद है कि कोई मर्द किसी भाई से उसकी बहन या बाप से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, फिर बाप या भाई उसका निकाह कर देता, और इस तरह से वो उसका निकाह होता। जो आज के दौर में भी इस्लाम के अंदर ये चीज़ मौजूद है, ये आम निकाह था। इसके अलावा एक दूसरी निकाह की सूरत क्या थी जो इंतहाई बदतरीन किस्म की अडल्ट्री और बहुत ही बुरा घिनौना फेल लगता है, लेकिन जब इंसान ऐसे काम करते हैं तो उनको ऐसी चीज़ें बुरी नहीं लगती, कि किसी भी कोई शौहर अपनी बीवी को खुद दूसरे मर्द के पास भेजता था, जब वो पीरियड से पाक होती तो ख़ुद उससे ताल्लुक़ कायम किए बगैर उसको कहीं भेजता और किसी शहर के बड़े मारूफ शख्स के पास भेजता। मसलन कोई शायर, कोई अदीब, कोई मुसन्निफ, कोई बड़ा बहादुर शख्स होता, और उनका ख्याल क्या था कि इस तरह उससे ताल्लुक़ पैदा करो और जब तक औरत उससे प्रेग्नेंट नहीं हो जाती उसको वापस नहीं लेके आता। और उसका ख्याल क्या था कि इससे जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा आला नसब वाला पैदा होगा। जब औरत प्रेग्नेंट होती फिर उसके बाद वो उसको वापस लाता। इसको इस्तेबा कहते हैं, इस्तेबा, अलिफ सीन ता बा द्वात अलिफ ऐन, इसका लफ्जी माना होता है बीज डालना, यानी बीज डलवा के उससे लाते। इसी निकाह को इंडिया में नियोग कहते हैं। शायद आपने इसकी तफसीलात कभी हिंदुइज्म में अगर कंपेरेटिव रिलीजन पढ़ा हो तो उसमें आपने देखी होगी। इसी तरह आप देखिए कि निकाह की तीसरी एक सूरत क्या थी कि 10 लोगों की जमात एक औरत के पास जाती, सब उसे मुख्तलिफ वक्त में ताल्लुक़ पैदा करते। फिर उसके बाद जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती तो फिर वो औरत के अख्तियार में था कि किसको कहे कि ये बच्चा किसका है। जिस पे वो नाम रख देती, कहते हैं काहिनों को बुलाते और वो जो लोग देखते हैं ऐसी चीज़ों को, लेकिन वो औरत जिसका बच्चा कहती फिर उसका बच्चा मान लिया जाता। फिर इसी तरह एक चौथी किस्म ये थी कि कुछ औरतें जिनका काम ही ये था, उनको उस दौर में लौंडियाँ या रंडियाँ कहते थे, उन्होंने अपने दरवाज़ों पे झंडे लगाए होते थे, किसी आने वाले को रोकती नहीं, जब कोई आता वो उनके साथ ताल्लुक़ कायम करता और इस तरह जो बच्चे पैदा होता है उस औरत से, फिर कैफा शनास को बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये बच्चा किस मर्द से उसकी खूबियाँ मिलती हैं। और इस तरह की कैफियत थी कि जिस दौर में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा कि नसब तक भी सलामत नहीं थे। अफसोस की बात है कि आज जिस दौर में हम ये मज़मून पढ़ रहे हैं, आज भी कहानी कुछ इससे फ़र्क नहीं है। इस्लाम ने जो जिना या बदकारी को नाजायज़ करार दिया है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस्लाम नसब को महफूज रखना चाहता है। बच्चे को पैदा होते वक्त भी पता हो कि उसका बाप कौन है या उसकी माँ कौन है, लेकिन जब लोग नफ्स के गुलाम हो जाते हैं तो फिर ऐसे ही हालात बन जाते हैं कि जो इस वक्त भी सोशल डिसऑर्डर दिखता है। सिंगल पेरेंटिंग का आम तसव्वुर है, मर्द अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं लेकिन बच्चे को पालने और पोसने वाली या औरत है या उसकी माँ है। और इस तरह इस्लाम ने जो एक खूबसूरत तरीका दिया वो आज भी गुम गया, और जब गुमा हुआ था उस वक़्त इस्लाम आया। फिर इसी तरह आप देखिए कि जिना इतना आम था उस दौर में कि किसी तबका फ़िक्र के लोग उससे महर अलग नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको अपने आला नसब होने का ख्याल इस गंदगी में लिपटने से महफूज रखता था। यानी ये मैं जुमला कहते वक्त बड़े शऊर से सोच रही हूँ ये बात, कि आप देखिए कि उस दौर में जो लोग अपने आप को आला ख़ानदानी सोचते थे वो इस किस्म की गंदी चीज़ों में नहीं पड़ते थे। कहते थे नहीं, ये हमारे ख़ानदानी वक़ार और गैरत के ख़िलाफ़ है कि हम ये गंदे काम करें। और अमूमन ऐसे काम करने में आज़ाद औरतों की निस्बत लौंडियाँ ज़्यादा मारूफ थीं। आज क्या हुआ, आज की आज़ाद औरत लौंडियों से भी गई गुजरी हो गई। अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको और ऐसे हालात रखें। इसी अल्लाह के नबी के दौर में एक दफ़ा ऐसा हुआ, अबू दाऊद की रिवायत है कि एक शख्स ने खड़े होके कहा है, अल्लाह के नबी, फ़लाँ शख्स मेरा बेटा है, मैंने जाहिलियत के दौर में उसकी माँ से जिना किया था। तो आपने उसकी बात सुन के कहा कि इस्लाम में ऐसे दावे की कोई गुंजाइश नहीं है, अब तो बच्चा उसी का जिसका बिस्तर है और जानी के लिए पत्थर है। यानी कि अगर आज कोई बच्चा जिना के नतीजे में पैदा हो भी जाता है तो वो बाप फिर भी उसका बाप नहीं कहलाएगा। असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यानी हमारे सामने खोल के इसलिए रखा कि हम अपने इर्द गिर्द को देखते हुए कम से कम अपने इस्लामी तौर तरीक़ों को कायम रखें। और बस दफ़ा जब हमारा इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम कल्चर से होता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि हरज क्या है, इससे नुकसान क्या होता है। तो उस वक्त फिर अगर इन चीज़ों को हम सामने रखें कि इस्लाम हमारे लिए कोई जहमत नहीं, इस्लाम हमारे लिए एक रहमत बन के आया है, तो लिहाजा ऐसी चीज़ों में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। फिर बच्चों के साथ बापों का, माँ बाप का ताल्लुक भी अजीब था। बाज़ बाप ऐसे थे जो कि बच्चों के साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि वो कहते थे कि हमारे बच्चे हमारे दिल के टुकड़े हैं और हम इनके लिए हर गलत काम भी करने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे कि बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। औरत की शान क्या थी कि पैदा होने से पहले उसकी कब्र तैयार होती थी। आज औरत कहती है कि इस्लाम ने मुझे क्या हक दिए, उसको जिंदा रहने का हक दिया। अगर इस्लाम ना आता तो हो सकता है आज हम में से भी कई पैदा होते ही माँ के पेट की कब्र से निकल के ज़मीन की कब्र में चले गए होते। अमूमन तीन वजह से बच्चियों का कत्ल होता था, एक तो इस आर की वजह से कि फलां की बेटी है, फिर इसी तरह मुफलस और इफलास की वजह से कत्ल करते थे कि ऐसा ना हो कि बहुत बच्चे हो जाएंगे और इसको पालना पड़ेगा। इसी तरह दामाद का घर में आना इसको भी अपने लिए एक बहुत बड़ा आर समझते थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि ख़ानदानी लोग थे, कुछ चीज़ें उनमें अच्छी भी थी, अगर आप उनकी बातों को देखें तो अरबों में कुछ खूबियाँ भी थी। ये मत सोचिए कि उनमें सारी खराबियाँ थी। अल्लाह ने अगर उनको उस पैगाम के लिए चुना कि जिसको सारी दुनिया में फैलना था तो उनकी खूबियाँ भी थी, तभी तो उसके लिए चुना। मसलन आप देखिए कि सखावत बहुत थी, करम और सखावत, इतने मेहमान नवाज थे कि मेहमान घर में आ जाता था और अगर सिर्फ एक ही ऊँट होता ना अपनी सवारी का, उसको भी ज़बह कर देते और अपने मेहमान को ज़रूर खिलाते थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि वादों को पूरा करने के बहुत ज़्यादा हरीस थे, कमिटमेंट बहुत थी, यानी एक दफ़ा वादा कर लेते थे फिर उससे पीछे नहीं हटते थे। फिर इसी तरह खुददारी और इज़्ज़त नफ्स बहुत थी, यानी छोटी छोटी बातों पे लड़ने को जो तैयार होते थे उसकी वजह भी अपनी इज्जत को बचाना था। फिर इसी तरह हिल्म और बुर्दबारी और संजीदगी उनमें बहुत थी, सादा ज़िंदगी बसर करते थे, सच्चे थे, मेहनती थे। अब इतनी ज़्यादा खूबियों के बावजूद भी देखिए कि बुराइयों में फंसे, इससे क्या पता चलता है कि कोई इंसान कितने ही अच्छे किरदार का क्यों ना हो, उसको भी रहनुमा की ज़रूरत होती है। आज के दौर में जब ये कहा जाए कि फ़लाँ जगह दीन हो या अल्लाह के नबी की बात हो, तो लोग कहते हैं नहीं, उनके तो अख़लाक ही इतने अच्छे हैं। मसलन अगर आप इसको सिंपल देखें तो बाज़ दफ़ा नॉन मुस्लिम लोगों में बहुत अच्छे काम देखे जाते हैं, बड़ा अच्छा उनका अख़लाक है, किरदार है, तो लोग कहते हैं इनको क्या सिखाने की ज़रूरत है, ये तो ऐसे इतने अच्छे लोग हैं, ये तो इतने नाइस लोग हैं, और हम इनको क्यों रोकें। नहीं, दुनियावी एतबार से किसी में कितनी ही खूबियाँ क्यों ना हो, उसके बावजूद उसको दीन की और उसको हिदायत की ज़रूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसानियत अपनी तबाही के आखिरी घड़े में पहुंची हुई थी जिस वक्त अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में भेजा। कोई बुराई जिसको आप बुराई समझें, और वो उस वक्त में मौजूद थी। आज के दौर में जब कोई बात की जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं, आज के दौर के हालात बहुत फ़र्क हैं। नहीं, फ़र्क नहीं है, हालात वही हैं, सिर्फ ये है कि मामला बदला हुआ है। हमारा पैगाम वो नहीं रहा, हमारी दावत वो नहीं रही। फिर इसी तरह अगर हम देखें कि अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने किस ख़ानदान में पैदा किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब पीछे से हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम से जुड़ता था, उससे पहले हज़रत इस्माइल, उससे पहले अदनान। फिर उसमें आपकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ मिलती हैं, इंशाल्लाह जब किताब आपके पास होगी तो आप अपने शौक़ से ख़ुद भी पढ़ सकते हैं कि आपका नसब कैसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर जो आप लोगों ने के शायद दिलचस्पी की होंगी, मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा थे ना, वो हाशिम थे। नाम सुना होगा आपने, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हाशिम इनको क्यों कहते थे? हाशिम कहते हैं कि ये रोटियों को चूरा करके, तो जैसे वो होती है ना यखनी, उसमें डिप करके खाते थे। हाशिम कहते हैं तोड़ने वाले को, तो रोटियों को चूरा चूरा करते थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। अब्दुल मुत्तलिब की भी अजीब ही कहानी है कि वो मतलब अपने बाप ही के साथ घोड़े एक दफ़ा सवारी पे बैठ के आ रहे थे, तो लोगों ने समझा कि ये शायद इस शख्स ने कोई ग़ुलाम अपना ख़रीदा है, लेकिन वो असल में वो अपना बेटा ही था। दूर से लोगों ने उनको आता देख के अब्दुल मुत्तलिब कहा, मुत्तलिब इनके बाप थे। बहुत दिलचस्प कहानियाँ भी हैं कुछ इसमें, मसलन के आप नबी सल्लम के बुज़ुर्गों में एक शैबा शख्स थे, कहते हैं कि वो पैदा हुए तो उनके बाल सफ़ेद थे, और शैब शैब शबाब इसी से है ना, बुढ़ापे को कहते हैं, इस वजह से उनको शैबा कहा जाता है। एक चीज़ शायद आपके लिए दिलचस्पी की होगी, और वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप अब्दुल्ला, ये अपने बाप के बड़े प्यारे बच्चे थे। और अब जो इनके अब्दुल मुत्तलिब थे, इनके 10 बेटे थे। इन्होंने किसी मौके पे एक मन्नत मान ली थी, और वो मन्नत क्या थी कि मुझे अपना जो बच्चा सबसे प्यारा होगा उसको मैं कुर्बान करूँगा। उस दौर का ये रुझान होता था, या उस दौर का ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों को ज़िबा करते थे। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि जब 10 दफ़ा उन्होंने कुर्रा डाला तो उसमें नाम अब्दुल्ला का ही आया, और अब्दुल्ला का नाम आया, और वो अब्दुल्ला को नहीं मारना चाहते थे, या दूसरे लोग भी नहीं मारना चाहते थे। तो हर दफ़ा फिर अब्दुल मुत्तलिब ये कहते रहे कि अच्छा, मैं अब्दुल्ला को नहीं ज़िबा करूँगा, बल्कि मैं 10 ऊँट और ज़िबा कर दूँगा। फिर दोबारा उनका आ गया, फिर 10 10 करते हुए वो 10 ऊँटों से 100 ऊँट हो गए। तो उस दिन से ये जो ब्लड मनी, जिसको आज भी हम 100 ऊँटों की कीमत से समझते हैं, ये उस दौर से निकली। 10वीं के बाद जो 11वीं 12वीं, तो फिर उसके बदले में ऊँट का नाम आया था। तो अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में आता है, आप कहा करते थे कि मैं 2 ज़बीहों, यानी मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ, एक तो अब्दुल्ला और दूसरे इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल का लकब भी तो ज़बीहुल्लाह था ना, कि अल्लाह ताला ने उनका ऐन वक्त पे बचा लिया था। और दूसरी तरफ हज़रत जो अब्दुल्ला थे आपके बाप, फिर इसी तरह बीबी आमना अल्लाह के नबी की माँ थी, उनको भी अल्लाह ताला ने एक ख्वाब दिखाया था। और उन कहती हैं कि जब मैंने अल्लाह के नबी सल्लम की पैदाइश हुई, तो मैंने अपने जिस्म से एक नूर निकलता हुआ देखा कि जो ऐसे मशरक़ से मग़रिब में फैल गया। फिर इसी दौर में जबकि अल्लाह के नबी सल्लम की आमद बिल्कुल करीब थी, तो वाक़े फील हुआ था। कितने लोग जानते हैं उस वाक़े के बारे में? अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। इसकी थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने अगर रखूं, अबरहा नाम का एक शख्स था, स्याह हबशी था, निजाशी बादशाह का मुकरर करदा गवर्नर था, यमन में रहता था। इसने जब देखा कि मुसलमान या अरब के सब लोग आते हैं और खाना काबा में तवाफ़ करते हैं और हज करते हैं, तो इसके दिल में हसद पैदा हुआ। इसने एक कलीसा तामीर किया, ईसाई था अपनी नस्ल से, अपने मजहब से, इसने सोचा कि लोगों को मैं वहाँ से डाइवर्ट करूँ, बजाय इसके कि लोग खाना काबा में जाएं और वहाँ तवाफ़ करें, मैं उनको इस तरफ बुलाऊं और यहाँ करूँ। अब जब ज़ाहिर हुआ तो एक थोड़ी सी आपस में चपकलश हो गई, कुछ लोगों ने उसके कलीसा में जाके गंदगी फैला दी, तो इसने कहते हैं 60,000 हाथियों का एक लश्कर तैयार किया, 60,000 हाथियों का तर्श किया, और कहते हैं कि अपने लिए जो उसमें सबसे सेहतमंद किस्म का हाथी था उसको लिया, उस पर बैठा, 9 या 13 किस्म के और, मतलब उसमें लश्कर में और भी हाथी थे, 60,000 लोग थे और 9 या 13 कुछ कहते हैं कि उसके अंदर हाथी थे, और ये यमन से निकला, और जू ही ये वादी महसर के करीब पहुंचा तो इसके ऊँट बैठ गए। अब ये उनको कह रहा है कि चलो चलो, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ऊँट नहीं उठ रहे थे, और वहाँ पे फिर आपको पता है कि अल्लाह ताला ने आसमान से अबाबीलों को भेजा, कि जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है कि छोटी छोटी चिड़ियाँ थी, हर चिड़िया के बस 3 पत्थर थे, 2 उसकी पंजों में थे और 1 चोंच में था, और वो ऊँट ऐसे उनको लगते थे कि जैसे बुलेट। आज के दौर में आप देखिए गोली कितनी छोटी सी होती है, लेकिन बंदे का काम तमाम करती है, तो इस तरह वो उनके सर से गई और जिस्म, कहते हैं कि जहाँ जहाँ वो बुलेट लगते थे उनके वो अज़ा झड़ने लगे, हत्ता कि ये शख्स खुद भी वहाँ मरा और बाकी भी मरे, और कहते हैं चूज़े की तरह ये छोटा सा हो गया, इसका सीना फटा और दिल बाहर आया और वहीं मर गया, और अल्लाह ताला ने क़यामत तक लिए ये निशानी बना दी कि जो मेरे घर की तरफ मैली निगाह से देखेगा मैं उसको तबाह करूँगा। ये वाक़या उस दौर की सुपर पावर्स रूम, रूस और फारस थी, जो रूम और फारस थी, इन तक पहुंच गया। आप ज़रा सोचिए, आज के दौर में तो अखबार है, इंटरनेट है, 1 मिनट में खबर पूरी दुनिया में फैलती है, अब ये कोई छोटा वाक़या थोड़ी था कि किसी ने जी मक्का को ढाने की, खाना काबा को ढाने की कोशिश की, फिर आसमान से परिंदे आए और वो सारे मारे गए। कहते हैं कि ये खबर जो थी ये पहुंच गई वो सुपर पावर्स पे, वो कुछ यहूद भी थे कुछ नसारा थे, उस वक्त उनके दिल में ख्याल आ गया कि अब उस वादे के पूरा होने का वक्त आ गया जो हमारी किताबों में लिखा था, और खाना काबा के बारे में उनके दिल में एक ऐसा रोब तारी हो गया कि अब देखना अल्लाह ताला इधर कोई ख़ास काम करेगा। अब देखिए कि जब हम तारीख़ को पढ़ते हैं तो हमें कितनी ही चीज़ें मिलती हैं ना कि जिसकी वजह से हम अपने आप को अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब भी महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अल्लाह ताला जो बातें हमारे सामने लाते हैं उसका कई दफ़ा मुस्तकबिल की बातों से ताल्लुक़ होता है, कुछ का माजी से ताल्लुक़ होता है। तो अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी इसका खुलासा और लुबे लुबाब क्या है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला ने अपने नबी को जिस माहौल में भेजा वो दौर ऐसा था कि इंसानियत वाकई ऐसे मुसलह की मतलाशी थी। जब लोग नफ्स परस्ती के शिकार हो जाते हैं ना, फिर अपनी ही कमी और कोताहियों की वजह से अपने हाथों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपने बच्चे अपने हाथों में नहीं रहते, अपने अंदर दीन नहीं रहता, खुदा से दूरी है, तो फिर ऐसे वक्त में लोग मौजज़ात का इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और कोई ये बात सिखा दे। आज का दौर मुझे लगता है कि उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ दौर नहीं। हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन हम ये दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह इस वक्त भी मुसलमान दुनिया के जिस जिस कोने और ख़त्ते में अल्लाह के नबी की तालीमात से दूर हो चुके, ऐ अल्लाह तू वहाँ अपने नबी का पैगाम पहुँचा और इस्लाह और हिदायत की कोशिशें फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।